ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने झापा के दापगाछी में 1,63,00,00,000 रुपए की लागत से दमक बिजनेस कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। निजामती विधेयक के ऊपर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में संशोधनकर्ताओं से चर्चा शुरू। नेपाल दौरे पर आए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने नेपाली कांग्रेस के सभापति और माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड से की मुलाकात। और सीरियाई विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के अंत की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने झापा की दमक नगरपालिका वार्ड नंबर 3 दापगाछी स्थित दमक व्यापारिक कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि झापा में दमक बिजनेस कॉम्प्लेक्स आधुनिक विकास का एक मॉडल है। आज बड़ी जन सहभागिता के साथ 18 मंजिला 100 मीटर ऊंचे परिसर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने विश्वास जताया कि इसके संचालन के बाद नौकरियां पैदा होंगी और क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने दुनिया के बड़े देशों में आर्थिक संसाधनों और पहचान के लिए बनाई जा रही ऐसी ऊंची इमारतों का उदाहरण पेश करते हुए घोषणा की कि जिस क्षेत्र में ये परिसर स्थित है उसे एक आधुनिक शहर बनाया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वो अपने बलिदानों से लाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट नहीं होने देंगे और कहा कि देश चलाने का मुद्दा बिना तथ्यों के दूसरों पर आरोप लगाने जैसा नहीं होना चाहिए। मुख्य बाजार क्षेत्र से 4 किलोमीटर दूर 100 मीटर ऊंचे 18 मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण 1,63,54,46,000 की लागत में हुआ है। सरकार की अवधारणा इस परिसर को विकसित करने की है, जिसमें नेपाल का सबसे ऊंचा टावर है जो 4 बीघे और 16 कट्ठा क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने झापा की मेची नगरपालिका वार्ड नंबर 4 आम डाड़ी स्थित मानव सेवा आश्रम के जिला कार्यालय भवन का उद्घाटन और मानव सेवा स्मारक भवन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ओली और प्रथम महिला राधिका शाक्य ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ओली ने आश्रम भवन निर्माण के लिए 1 महीने का वेतन और प्रथम महिला शाक्य ने 2 महीने का पेंशन रकम देने की घोषणा की है। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने संघीय निजामती सेवा का गठन, संचालन और सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक पर संशोधन के आकांक्षियों से विचार विमर्श शुरू किया है। समिति की आज की बैठक में संशोधन आकांक्षियों ने कहा कि राज्य की ओर से दी जाने वाली सेवाओं को सरल, सहज और सुलभ बनाने की जिम्मेदारी वाले निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ और अपनी ही सेवा सुविधा की फिक्र में रहते हैं। इस अवस्था का अंत होना चाहिए। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि स्थायी सरकार के रूप में परिचित कर्मचारी तंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनाकर सार्वजनिक सेवा प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए आयन लाया गया है। बैठक में मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल ने कहा कि निजामती आयन न होने के कारण कर्मचारियों में निराशा बढ़ने से सेवा प्रवाह में समस्याएं आ रही है, इसलिए आयन को जल्द से जल्द पारित करने की जरूरत है। संशोधन आकांक्षियों ने विभिन्न प्रावधानों को शामिल करने की बात रखी, जिसमें थारू समुदाय का न्यायोचित संबोधन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य उपचार को उसकी व्यवस्था सिर्फ साझा यूनियन की रखे जाने की व्यवस्था, कर्मचारियों के दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य जाने की व्यवस्था, निजामती सेवा में प्रवेश के संदर्भ में महिलाओं की उम्र 37 और पुरुष की 32 वर्ष का प्रावधान और अवकाश की उम्र सीमा 60 वर्ष रखने लगाये प्रावधान शामिल है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा से संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण तथा मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने भेंटवार्ता की। सभापति देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में आज हुई मुलाकात में उनके बीच द्विपक्षीय हित के विविध पक्षों और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी सभापति देउवा के प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवा ने दी। इसी तरह निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड से अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने भेंटवार्ता की। अध्यक्ष प्रचंड निवास खुमलटार में उनके बीच भेंटवार्ता हुई। उन्होंने नेपाल और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि इस तरह की यात्राओं और बैठकों से आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। अमेरिकी सहायक मंत्री लू ने कहा कि नेपाल की प्रगति उनके लिए खुशी की बात है और वे हर तरह का सहयोग और सद्भाव बढ़ाते रहेंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सहकारी धोखाधड़ी और संगठित अपराध से संबंधित जांच के दौरान कास्की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए रवि लामिछाने को अदालत ने 4 और दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी है। कास्की जिला अदालत के सूचना अधिकारी सूरज अधिकारी ने बताया कि समय सीमा बढ़ाने के लिए लामिछाने को आज कास्की जिला अदालत लाया गया था। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि संघीय संसद को प्रभावकारी और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सभी पक्षों को एकजुट होकर काम करना होगा। संघीय संसद सेवा दिवस के अवसर पर संसद सचिवालय द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे ने कहा कि संसद को प्रभावकारी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि स्वास्थ्य संरचनाओं में सुधार करके स्वास्थ्य सेवा को और प्रभावकारी बनाया जाएगा। आज राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नेपाल जनस्वास्थ्य संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पौड़ेल ने ये बात कही। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि संविधान संशोधन का काम 1.5 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के बाद आगे बढ़ेगा। आज दांग की लम्ही में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल ने कार्यकर्ताओं को आगामी 84 के चुनाव में मजबूत शक्ति निर्माण करने के लिए अभी से ही काम करने का निर्देश किया। बागमती प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सूरज चंद्र लामिछाने ने कहा कि भाषा और संस्कृति पहचान के आधार स्तंभ है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल द्वारा आज हेटौड़ा में आयोजित राष्ट्र भाषाओं के समाचार एवं कार्यक्रम प्रसारण के सवाल और प्रदेश सरकार की भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री लामिछाने ने यह बात कही। मौके पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने कहा कि रेडियो नेपाल भाषा और समाज के एजेंडों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। बाजुरा के जिला मुख्यालय मारतर्डी में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मरने वालों में कंचनपुर जिला भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 18 की गायत्री पंत और वार्ड नंबर 17 की राधिका भट्ट शामिल है। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सेना ने कहा है कि सीरियाई विद्रोही अब राजधानी दमिश्क में पहुंच गए हैं। विद्रोहियों ने राजधानी घुसकर कब्जा कर लिया है। इसके चलते राष्ट्रपति असद भी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। 2 विद्रोही सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि विद्रोही हमले के बाद दमिश्क अब असद से मुक्त है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही सीरियाई लोगों को पहला बयान राज्य टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा। विद्रोहियों ने कहा कि वे सेना की तैनाती के बिना राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम ने रिकॉर्डिंग कर ये प्रस्ताव दिया और कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाकी दापगाछीमा 1,63 करोड़ रूपये की लागत से दमक बिजनेस कम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। निजामती विधेयक के ऊपर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में संशोधनकर्ताओं से चर्चा शुरू। नेपाल दौरे पर रहे अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने नेपाली कांग्रेस के सभापति और माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड से की मुलाकात और सीरियाई विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के अंत की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।